ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के इस्तेमाल पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। केंद्रीय सचिव अपूर्व चंद्रा ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य डायनामिक का वार्षिक प्रकाशन जारी किया। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। दिल्ली नगर निगम ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया और राजधानी में अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी जानकारी देते हुए आज पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ने का खतरा रहता है, जिस कारण यह निर्णय लिया गया है। एक रिपोर्ट।
सरकार ने दिल्ली में सर्दियों के दौरान होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। इस प्रतिबंध के तहत अगले साल 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उनके इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान ग्रीन पटाखे, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और उनकी डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। प्रतिबंध को शहर में कड़ाई से लागू कराने के लिए सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राजधानी में पटाखों की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध पर दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की बजाय कोई ठोस कदम उठाए। श्री बिधूड़ी ने कहा है कि पराली और धूल के प्रदूषण पर नियंत्रण के बिना दिल्ली को प्रदूषण मुक्त नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल से प्रदूषण फैलता है, इसके पक्ष में कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। श्री बिधूड़ी ने कहा कि सरकार को दिवाली के दौरान हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति तो देनी ही चाहिए। भाजपा सांसद ने कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा घोषित विंटर एक्शन प्लान में पराली जलाने और शहर की सड़कों की मरम्मत का जिक्र तक नहीं है। उन्होंने कहा है कि शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी के एक इंजीनियर और एक बिचौलिए को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों को सीबीआई की टीम द्वारा 91,000 रूपये से अधिक की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने तलाशी के दौरान इंजीनियर के परिसर से करीब 2.39 करोड़ रूपये नकद भी बरामद किए हैं। सीबीआई ने बताया है कि दोनों आरोपी कथित तौर पर रिश्वत लेकर निजी फर्मों को डीपीसीसी से सहमति पत्र दिलवाते थे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज एंटी करप्शन ब्यूरो को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करने के आदेश दिए हैं। राजधानी के पालम इलाके में नालों की सफाई में कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद उपराज्यपाल ने ये आदेश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर आरोप है कि उनकी मिलीभगत से लगभग 80 करोड़ रूपये के फर्जी बिलों का भुगतान किया गया। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पार्टी ने रोहतक सीट से बिजेंद्र हुड्डा को मैदान में उतारा है, जबकि इंदु शर्मा भिवानी सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहीं उचाना कलां सीट से पवन फौजी और घरौंडा सीट से जयपाल शर्मा अपनी किस्मत आजमाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की स्थिति पर पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा है कि अब समय बहुत कम बचा है और आप पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमरीका यात्रा के दौरान की गई टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आलोचना की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने ही आपातकाल लगाया था और संविधान की प्रस्तावना को बदल रखा था, लेकिन अब वे संविधान के बात कर रहे हैं।
Family that imposed emergency, that trampled upon constitutional rights, that put the opposition in jail, that has changed the preamble of the constitution, the spirit of the constitution, are advising us about constitution? If you are so concerned about this constitution, today your family and friend alliance in Jammu Kashmir, Omar Abdullah, Farooq Abdullah, have promised that 370 will be reimposed in the valley, which means that Indian constitution will not apply there. Are you in favor of 370 or are you in favor of Ambedkarji's constitution?
भारतीय जनता पार्टी ने आरजीकर मेडिकल अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए कोलकाता पुलिस आयुक्त को बर्खास्त करने की भी मांग की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज नई दिल्ली में भारत के स्वास्थ्य डायनामिक का वार्षिक प्रकाशन 2022-23 जारी किया। यह प्रकाशन हर साल 31 मार्च तक स्वास्थ्य सेवाओं और मानव संसाधन के व्यापक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।
इस अवसर पर श्री चंद्रा ने कहा कि ये वार्षिक प्रकाशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत श्रम शक्ति और बुनियादी ढांचे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ये जानकारी राज्यों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझने तथा उनके लिए नीतियां तैयार करने में मदद करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पोर्टलों के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इससे स्वास्थ्य कर्मियों को बोझ कम करने में मदद मिलेगी तथा ये सुनिश्चित होगा कि डेटा समय पर अपलोड और उसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण हो। प्रकाशन के अनुसार पिछले साल 31 मार्च तक देश के ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए 1,69,000 से ज्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र, लगभग 32,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 6,359 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसके अलावा 1,340 उप विभागीय और जिला अस्पताल, 714 जिला अस्पताल तथा 362 मेडिकल कॉलेज हैं। अभिषेक और आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
केंद्र ने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स के सभी संदिग्ध मामलों की जांच और परीक्षण करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने मंकी पॉक्स से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपात की घोषणा की।
मंत्रालय ने अपने परामर्श में मंकी पॉक्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने तथा लोगों में फैले डर को रोकने के लिए निवारक उपाय अपनाने पर बल दिया है। मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेषकर जन स्वास्थ्य से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करने का परामर्श भी दिया। राज्यों को संदिग्ध और पुष्ट दोनों मामलों की देखरेख के लिए अस्पतालों में पृथकवास सुविधाओं तथा आवश्यक लॉजिस्टिक्स और प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता की पहचान करने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य कर्मियों, विशेषकर चर्म यौन संचरित बीमारियों के क्लिनिक तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के क्लिनिक को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। भूपेंद्र और आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 54वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों के वित्त मंत्री भी उपस्थित थे। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक जून में हुई थी। इसमें परिषद ने सभी इस्पात, लोहा और एल्यूमीनियम दूध के डिब्बे पर 12% जीएसटी की एक समान दर की सिफारिश की थी। परिषद ने भारतीय रेलवे द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी न लगाने की सिफारिश की थी। इनमें प्लेटफॉर्म टिकट, विश्राम कक्ष और प्रतीक्षालय की सुविधा तथा बैटरी चालित कार सेवाएं शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आज नई दिल्ली में आयोजित हुई वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाले शोध अनुदान पर लगने वाले जीएसटी कर का मुद्दा उठाया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि देश के बड़े शैक्षणिक संस्थानों को शोध अनुदान पर जीएसटी कर न देने के पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जो अनुचित हैं। उन्होंने कहा कि शोध कार्य देश के विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए उन्हें जीएसटी कर के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की। इस बातचीत में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें बाराकाह परमाणु संयंत्र के संचालन और देखरेख के संबंध में अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर शामिल हैं। इस दौरान अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के बीच दीर्घकालीन प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पद्म पुरस्कारों के लिए प्रेरक हस्तियों को नामांकित करने का आग्रह किया है। नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। प्रधानमंत्री ने कई नामांकन प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में सरकार ने अनगिनत जमीनी स्तर के लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने कहा है कि पुरस्कार विजेताओं की जीवन यात्रा ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। पुरस्कार के लिए चयन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न पद्म पुरस्कारों के लिए अन्य व्यक्तियों को नामांकित करने के लिए लोगों से आग्रह किया। पुरस्कार के लिए नामांकन awards.gov.in पर किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया भर के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 27 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम ने सभी जोनों में विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान निर्माण स्थलों पर मच्छरों के प्रजनन की जांच की जा रही है। निगम ने बताया है कि अभियान के दौरान 290 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया और उनमें से 148 स्थलों पर मच्छरों का प्रजनन पाया गया। इस संबंध में निगम ने 83 कानूनी नोटिस और 60 अभियोजन जारी किए गए हैं और मच्छरों के प्रजनन को मौके पर ही नष्ट किया गया है। निगम ने निर्माण स्थल के मालिकों और बिल्डरों से अपील की है कि वे निर्माण स्थलों को स्वच्छ रखें और मच्छरों के प्रजनन को रोकने में सहयोग दें। दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने राजधानी में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 मोबाइल फोन, 3 हार्ड डिस्क और अन्य कीमती दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी से 11 लाख रुपए मूल्य के कई धोखाधड़ी के मामले सुलझे हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपी उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सूचीबद्ध कराने के नाम पर लोगों को ठगते थे। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय आज से दिल्ली में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए पहला संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम को तीनों सेनाओं के मेजर जनरल और उनके समकक्ष अधिकारियों सहित रक्षा, विदेश और गृह मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के इस्तेमाल पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। केंद्रीय सचिव अपूर्व चंद्रा ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य डायनामिक का वार्षिक प्रकाशन जारी किया। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 54वीं बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। दिल्ली नगर निगम ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया है। और राजधानी में अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।